शांति, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन पावन भूमि, तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, जितने नाम गिनाए उतने कम। ऐसी भूमि पर आप सभी इंदौर जोन के भाई बहने पहुंचे हैं, तो प्यारे बाप दादा, सर्व दादियां, सर्व वरिष्ठ भाई, सर्व मधुबन निवासी की ओर से तथा हमारी ओर से भी आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत ही भाग्यशाली हो कि मधुबन तपोभूमि में आपको भट्टी करने का मौका मिला है। बहुत चाहते हैं हम मधुबन में भट्टी करें, लेकिन जो मधुबन में भट्टी करते हैं वो अपने भाग्य की अवश्य बहुत सराहना करते हैं। आप सब जैसे ही पहुंचे तो आपको ये विजयमाला मिल गई। विजयमाला कहो या ठप्पा कहो या बैज कहो, योग तपस्या साधना भट्टी है। इसमें डबल लाइट स्थिति के लिए योग तपस्या भट्टी, तो योग तपस्या के लिए क्या साधना हमें करनी है जिससे हम डबल लाइट बन सके, उस पर विशेष आप ध्यान देंगे। और उसके अंतर्गत हमारे वरिष्ठ भाई बहनों द्वारा भिन्न भिन्न क्लासेस कराई जाएगी, योग कराया जाएगा। और जैसे दिनचर्या आपको सुनाई गई उसी अनुसार ही सारा कार्यक्रम होगा। हम सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण एक ही लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लोग हमसे पूछते हैं ना कि आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, तो मोटे रूप में तो हम उनको कहते हैं मनुष्य से देवता बनना, यही कहते हैं ना। क्या है इस संस्था का लक्ष्य? मनुष्य से देवता बनना। तो कहना तो बहुत सहज है मनुष्य से देवता बनना, लेकिन मनुष्य से देवता बनने की जो सीढ़ी कहो या जो मार्ग कहो, उस पर हम कैसे आगे बढ़ें, उसकी विधि भी बाबा बताते हैं। कोई जादू तो नहीं है कि मनुष्य से देवता हम कोई जादू की छड़ी घुमा लेंगे और आप बन जाएंगे, क्योंकि कलयुग में तो तमो प्रधान मनुष्य है, विकारों से भरपूर है। तमो प्रधान स्थिति होने कारण आत्मा इतनी कमजोर है कि कोई शक्ति नहीं, और परिणाम स्वरूप दुख, अशांति, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, विघ्न, समस्याएं दिन प्रतिदिन जो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण तनाव, तनाव से भी और आगे अफरा तफरी, न जाने क्या क्या मनुष्यों को अनुभव होता है, और आगे चलकर धीरे धीरे डिप्रेशन, अवसाद, ये सब जो मनुष्य अनुभव कर रहे हैं, जिससे मानव जीवन जो बाबा कहते हैं कौड़ी तुल्य बन गया है। कहां ये मानव जीवन हीरे तुल्य था और अभी कौड़ी तुल्य बन गया है। तो बाबा आकर के फिर से हम आत्माओं को वो शक्ति देते हैं जिससे हम फिर से वापस अपनी ओरिजिनल स्टेज तक पहुंच सके। बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गई है तो पावर हाउस से कैसे कनेक्ट करें और अपनी बैटरी को फिर से पूरा चार्ज करें, उससे ही हम देवता बन सकेंगे। क्योंकि देवताओं की बैटरी तो फुल चार्ज है, 16 कला संपूर्ण है। तो बाबा आए हैं हम बच्चों को रिजुविनेट करने, पुराने से एकदम नया बनाने, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। और उसके लिए बाबा ने हमें ये याद की यात्रा सिखाई है। आज भी बाबा ने याद की यात्रा पर कितना सुनाया। तो मनुष्य जो आज शूद्र बन गए हैं, शूद्र अर्थात क्षुद्र, एकदम गिरे हुए, एकदम निचले स्तर पर, तो ऐसे शूद्र स्थिति से एकदम चोटी पर लाना ये भगवान का ही कार्य है। तो उसके लिए बाबा ने सबसे पहले हमें अपना बच्चा बनाया। ब्रह्मा मुख वंशावली हम ब्राह्मण कुलभूषण बने, और ब्राह्मण बन करके, क्योंकि ब्राह्मण ही देवता बन सकते हैं, मनुष्य डायरेक्ट देवता नहीं बनेगा, पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा। देव ब्राह्मण देवताई नमः गाया हुआ है, तो ब्राह्मण जब तक नहीं बने हैं तब तक देवता नहीं बनेंगे। तो ब्राह्मण बनने के लिए बाबा ने हमें कितनी बातें सुनाई। भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में ब्राह्मणों के बारे में बहुत बातें हैं, और बाबा ने उसका सही अर्थ बता करके सच्चा ब्राह्मण बनाया। तो ब्राह्मण माना ये ब्रह्मा से संबंधित है, ब्रह्मा की संतान है ब्राह्मण। और ब्रह्मा को फिर लोगों ने मिक्सअप करके ब्रह्म के साथ जोड़ दिया है, तो इसीलिए ब्रह्म के साथ कई शब्द जुड़ गए हैं, कई शब्द जुड़ गए हैं, जैसे ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भोज, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मचर्य है, सब ब्रह्मा के साथ संबंधित, लेकिन उनको ब्रह्म कह दिया है। ब्रह्म तो हम आत्माओं का घर है, न उसका ज्ञान है, न उसका कोई आचरण है, न ही उसका कोई भोजन है, तो सब ब्रह्मा से तैलुक रखने वाले। तो बाबा ने हमें सच्चा ब्राह्मण बनाया। कैसे बने ब्राह्मण? सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिखाया। हर मुरली में बाबा अमृत वेले का कितना महत्व होता है। बाबा हमेशा कहते हैं जब भोगी सोते हैं तो योगी जागते हैं, ना? भोगियों के सोने का समय है 2-3 बजे और योगियों के जागने का समय है। तो जब सारी दुनिया सोई है, योगी जाग करके तपस्या करते हैं, शुद्ध वातावरण हो जाता है। इसलिए बाबा रात को योग करने की मना करते हैं, क्योंकि तमो प्रधान वातावरण होता है ना, 12 बजे 1 बजे, इसीलिए बस 2 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बाबा बताते, अमृत वेला योग करो तब लाइन क्लियर होती है और डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। हाँ, पहले होता था ना कि जब एसटीडी कॉल होते थे तो एसटीडी कॉल में सवेरे सवेरे सस्ता पड़ता था, नहीं पहले सस्ता पड़ता था, फिर जैसे दिन होता था तो वो एसटीडी की चार्जेस बढ़ जाती थी। तो इसीलिए सवेरे सवेरे सब सहज हो जाता है क्योंकि लाइन क्लियर होती है। तो इसीलिए बाबा ने ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। फिर दूसरा महत्व क्या बताया, ब्राह्मण का ब्रह्मा भोजन, वो ब्रह्म भोज कह देते हैं। तो ब्रह्मा भोजन शुद्ध शाकाहारी बाबा की याद में पकाया हुआ और भोजन, वो भोजन स्वीकार किया हुआ भोग लगाकर, ये ब्रह्मा भोजन। तो ये दूसरा ब्रह्म के साथ संबंध। तीसरा बाबा कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। तो शिव बाबा ने जो ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान दिया, जो बाबा कहते हैं केवल मैं ही दे सकता हूँ दुनिया में या शास्त्रों में जो कुछ भी है सब भक्ति कांड है, सब भक्ति की बातें। जो द्वापर युग से हम भक्ति की सीढ़ी चढ़े, बाबा ने उस दिन भी कहा भक्ति की सीढ़ी क्या चढ़े, एकदम तमो प्रधान हो गए। अब बाबा ज्ञान की सीढ़ी हमें चढ़ाते और भक्ति की सीढ़ी से उतरते, है ना। तो इसीलिए ज्ञान केवल एक परमात्मा ही दे सकता है। सत्य ज्ञान किसको कहेंगे, आत्मा का, परमात्मा का, कर्मों का, समय का, ये ज्ञान जो भगवान के सिवा और कोई नहीं दे सकता है। तो इसीलिए ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मा द्वारा शिव परमात्मा का ज्ञान, ये हमें इस समय मिलता है। तो ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म भोज, ब्रह्म ज्ञान और फिर चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का भी संबंध ब्रह्मा से ही है। ब्रह्मा ने जो आचरण किया उस आचरण पर हम उनके बच्चे चलते हैं। तो ब्रह्मचर्य शब्द पड़ गया। ब्रह्मचर्य केवल काम विकार को जीतने की केवल बात नहीं है, ब्रह्मा ने जो आचरण किया वो जीवन में लाना, वो सच्चा ब्रह्मचर्य, जिसमें पवित्रता 100% 100% पवित्रता। 100% पवित्रता किसको कहा जाता है, केवल कर्म की पवित्रता नहीं, वचन की नहीं, कर्म वचन यहाँ तक मनसा, पर मनसा से भी सूक्ष्म, मनसा से भी सूक्ष्म कौन सी पवित्रता है, स्वप्नों की पवित्रता, स्वप्न में भी पवित्रता, ये मनसा से भी सूक्ष्म है। मनसा तो फिर भी हमारे कंट्रोल में, हमको पता चलता हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन स्वप्न हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। वो तो जो हमारे अनेक पुराने जन्मों के संस्कार है वो स्वप्न में प्रकट होते हैं और वो हमारे कंट्रोल से भी बाहर होता है, लेकिन स्वप्न में भी पवित्रता। इतने हद तक बाबा हमें पवित्रता की सीढ़ी बताते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य जो बाबा कहते हैं, क्योंकि पवित्रता ही मूल आधार है, सतो प्रधान स्थिति लाने के लिए पवित्रता ही मूल आधार है। और इसी पर ही संस्था के दिल्ली को कितने झगड़े होते हैं, पवित्रता की तो सारी बात है। कईयों ने बाबा को कहा, बाबा आपकी संस्था में इतने थोड़े लोग क्यों आते हैं, और सन्यासियों के पास तो लाखों जाते हैं, आपके पास कितने आते हैं। अब परंतु ये क्यों डरते हैं, भाई बहन बनाते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, घर बार छुड़ाते, घर बार तो छुड़ाते नहीं हैं, लेकिन भाग कर आ जाते हैं कई। शुरू शुरू में तो बहुत हुआ, लेकिन बाबा कहते मैं तो घर बार छुड़ाता ही नहीं हूँ। ब्रह्मा बाबा ने भी अपना घर बार नहीं छोड़ा, छोड़ा क्या, परिवार के साथ ही रहता था ना बाबा। लेकिन बच्चे क्योंकि पवित्रता की धारणा उनको करनी थी तो घर से भागे, लेकिन अभी तो बाबा किसी को भी नहीं रहने देते। तो समय बदल गया, उस समय तो यज्ञ बनना था और वो फाउंडेशन पढ़ना था, इसीलिए ऐसे हुआ। लेकिन बाबा ने बाद में तो बिल्कुल बना किया, कोई भी ऐसे नहीं रह सकते, है ना। कई समस्या भी, ब्रह्मा कुमारियों की संस्था है, कोई ऐसी विधवाएं होंगी, ये सब सफेद सफेद कपड़े पहनते हैं, विधवाएं होंगी, क्या पता कोई अनाथ आश्रम है, पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है लोगों को, लेकिन अभी धीरे धीरे समझने लगे हैं। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को पहले ब्राह्मण बनाया, फिर ब्राह्मण जब बने तो उसमें बाबा ने इतनी धारणाएं बताई, चार सब्जेक्ट्स बाबा ने हमें दिए, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये चार सब्जेक्ट्स के अंतर्गत हमारे जीवन में परिवर्तन आया और इसी परिवर्तन के आधार से हम डबल लाइट बने। तो डबल लाइट जो बाबा कहते हैं, लाइट माना ज्योति प्रकाश और लाइट माना हल्का, क्योंकि आत्मा पर बहुत जन्मों का बोझ है, पापों का बोझ है, फिर पापों का बोझ तो फिर भी मोटा रूप है, लेकिन उससे और सूक्ष्म विकल्पों का बोझ है, व्यर्थ संकल्पों का बोझ है, अनेक कर्मों का हिसाब किताब है, ये सब आत्मा पर बोझ है। तो बाबा कहते हैं ये जो इतना सारा बोझ है, इन सबको मिटाना, तब तो डबल लाइट बनेंगे, है ना? कोई मोटा होता है शरीर में तो कहेंगे भाई हल्का बनो, वजन कम करो, वजन कम करो। तो बाबा हमारा जो आत्मा पर बोझ है वो कैसे कम करते हैं? बाबा कहते हैं सब बीमारियों की एक ही दवा है, सब अमृत धारा एक दवाई होती है ना, एक ही दवाई में सब बीमारियों की का इलाज है। तो वो एक ही इलाज, एक ही दवाई, कौन सी है वो दवाई? हाँ, मुझे याद करो, बस मन बना भव। तो सचमुच बाबा की याद कैसे हमें सब बंधनों से मुक्त करती है, क्योंकि बाबा तो बंधन मुक्त है, बाबा को तो कोई बंधन नहीं है, आत्माएं तो फिर भी कई बंधनों में, क्योंकि कई चक्रों में है ना, आत्मा के साथ कितने चक्र लगे हुए हैं, अगर गिनती करें सबसे बड़ा चक्र कौन सा है? जन्म मरण का चक्र। बाबा ने उस दिन भी कहा कि मैं भी बिंदी हूँ, तुम भी बिंदी हो, लेकिन सबसे बड़ा अंतर क्या है? मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ, क्योंकि जन्म मरण के चक्र के साथ और कई चक्र जुड़ जाते हैं। कौन कौन से चक्र जुड़ते हैं? जन्म मरण के चक्र के साथ फिर कर्म और फल का चक्र जुड़ जाता है, क्योंकि जन्म, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या कहते हैं, भाग्य लेकर आया ना, वो फल ले आया, पूर्व जन्म का फल, तो भाग्य लेकर आया। और जब शरीर छोड़ती आत्मा तो क्या कहते, अपना कर्म अपने साथ ले गया। तो कर्म और भाग्य ये भी एक चक्र है, और उसी अनुसार आत्मा चक्र में आती है, कर्म और फल के चक्र में। फिर कर्म फल के चक्र के साथ तीसरा चक्र कौन सा जुड़ा हुआ है? पाप और पुण्य का। कौन सा कर्म? तो पाप और पुण्य का चक्र है। तो सतयुग में बाबा कहते सब पुण्य आत्माएं, इस समय का पुण्य जो आत्मा जमा करती है वो आत्मा अपने साथ ले जाती है, और फिर द्वापर त्रेता अंत तक वो पुण्य साथ चलता है, और फिर द्वापर से कैसे पाप का चक्र चालू होता है। तो पाप और पुण्य का चक्र, फिर पाप पुण्य के साथ कौन सा चक्र जुड़ता है? सुख और दुख का, क्योंकि पाप कर्म से दुख होता है और पुण्य कर्म से सुख होता है, तो सुख दुख का चक्र। और बाबा कहते हैं यही इस चक्र का नाम है, यही खेल है, खेल है ना, हार। फिर उसके साथ और चक्र कौन से जुड़ते हैं? जो भी सापेक्षता है वो इस ये चक्र बन जाती है। कौन से चक्र? सुख दुख के चक्र के साथ हानि लाभ, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, ये सारे चक्र जुड़ जाते हैं। इसीलिए संसार को क्या कहते हैं? एवरीथिंग इज रिलेटिव, हर चीज सापेक्ष है, केवल एक परमात्मा ही है जो निरपेक्ष है, वो उनका, उनके समान भी कोई नहीं है। उनसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं, लेकिन उनके समान भी कोई नहीं है, तो इसीलिए उनको निरपेक्ष कहते हैं। जब निर्गुण, निरंजन, निराकार कहते हैं तो इसका भी तो अर्थ है ना। निर्गुण माना जो प्राकृतिक गुण है वो ईश्वर के नहीं गुण है। परमात्मा निराकार है माना, निर्गुण है माना प्राकृतिक गुणों से परे है। और प्रकृति के गुणों में तो परिवर्तन बहुत होता है, सत्व, रजो, तमो, ये सब आता है प्रकृति के गुणों में। हर चीज प्रकृति में सत्व, रजो, तमो से गुजरती है, तो निर्गुण है। फिर निराकार है माना प्रकृति जैसा आकार नहीं है, आत्मा भी निराकार है। फिर निरंजन माना कोई भी प्रकार का लेप छेप नहीं है, पाप, पुण्य, सुख, दुख, ये सब जो लेप छेप है परमात्मा के साथ नहीं लगते। तो इसीलिए परमात्मा सबसे ऊंचा भी है, सबसे न्यारा भी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मैं सब चक्रों से परे हूँ, पर आत्मा चक्रों में आती है, यही सबसे बड़ा अंतर है। इसीलिए आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती है, लेकिन हाँ परमात्मा के गुण धारण करके परमात्मा समान जरूर बन सकती। कल भी बाबा ने कहा ना, मास्टर ज्ञान सागर, शांति सागर, प्रेम सागर, आनंद सागर बन जाती है, लेकिन केवल संगम पर। सतयुग में ये नहीं होंगे, सतयुग में हमारे ये हमारी महिमा नहीं होगी, ज्ञान सागर, शांति सागर, प्रेम सागर। इस समय हम मास्टर ये बनते हैं, बाबा के गुणों के मास्टर बनते हैं, बाप समान बनते हैं। तो बाप समान भी मास्टर बनते हैं, परमात्मा नहीं बनेंगे। इसीलिए कहते हैं कि भी लीन होने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो देखो कितना अंतर हो गया जो दुनिया में बताते हैं और बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं। तो इसीलिए इन सब से बाबा में न्यारा बनाते हैं। जैसे ही हम ब्राह्मण बने, अपने सही स्वरूप को पहचाना, अपनी दिव्यता का आभास हुआ कि हम कितने ऊंच थे, तो उस अनुसार हम पुरुषार्थ करना शुरू कर देते हैं। फिर सारे जो बोझ है वो सब हटाना है, सब निकालना है, क्योंकि आत्मा अंतर में इतनी प्योर है। इसलिए वो बताते हैं ना, जब कोई भी ये स्कल्प्टर होता है जो मूर्ति बनाता है, अब उसको तो मूर्ति बनाने लिए एक एक मोटा सा पत्थर दिया जाता है, उबड़ खाबड़ वाला पत्थर दिया जाता है, और उसको कहा जाता है इस पत्थर से मूर्ति बनाओ। तो वो जैसे ही पत्थर को देखता है, वो पत्थर को नहीं देखता है, लेकिन क्या देखता है, क्या देखता है कि उसके अंदर एक मूर्ति है। तो मूर्ति बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, बस हथौड़ी और छेनी से टुकड़े 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 काटने पड़ते हैं। जो वो बोझ था उसके ऊपर, वो बोझ को निकालना होता है, निकालना होता है, निकालना होता है। और उसी जो बेढंगा पत्थर है, उस पत्थर से क्या बन जाता है, इतनी सुंदर मूर्ति बन जाती है। यह मूर्ति उसके अंदर ही, कोई मूर्ति कोई अलग से नहीं होती है, लेकिन वो कैसे मूर्ति बनती है, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सब निकल जाती है, निकल जाती है। तो हम आत्माएं भी जो सत्व प्रधान थी, फिर धीरे 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 ये सब अवगुण जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, और आत्मा आज इतनी बोझ वाली बन गई है जो डबल लाइट बन ही नहीं सकती है। तो क्या हमें करना है, लक्ष्य क्या रखना है, कि ये जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, खामियां हैं, तीन शब्द बाबा कहते हैं, कमी, कमजोरी और खामी, ये तीनों का अलग अलग अर्थ है। तो कमी तो भरनी होती है, क्योंकि सतयुग में हम जाएंगे तो सर्वगुण संपन्न होंगे, तो जो भी कमी है उस सर्वगुण संपन्न बनने में कमी है, वो कमी अपने अंदर भरनी है। फिर खामियां जो है वो डिफेक्ट्स वो निकालने हैं, और कमजोरी जो है उसमें शक्ति भरनी है। तो ये तीनों जब हम अपने पुरुषार्थ में करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो वेस्ट है वो सारा वेस्ट खत्म हो जाता है। तो और क्या बन जाते हैं, बाबा कहते हैं डबल लाइट जब बनते हैं तो क्या टाइटल बाबा देते हैं, फरिश्ता। अभी हम क्या कहेंगे, बाबा फरिश्ता बने हैं, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने। पर फरिश्ता बनने के लिए संपन्न बने और संपूर्ण बने, और संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए डबल लाइट बने, जिसको बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था। तो संपन्न और संपूर्ण में भी अंतर है, ये दो शब्द है लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। संपन्न कब होते और संपूर्ण कब होते हैं, संपन्न किसको कहेंगे, संपूर्ण किसको कहेंगे। संपन्न जिसको इंग्लिश में कहेंगे फुल, और संपूर्ण जिसको इंग्लिश में कहेंगे कंप्लीट। तो फुल भी और कंप्लीट भी, जैसे पूर्णमासी पर चंद्रमा संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। तो संपन्न कैसे है, लाइट में संपन्न है, सबसे अधिक प्रकाश चंद्रमा में पूर्णमासी की रात पर होता है। बाकी तो चंद्रमा है परंतु वो पूरी लाइट नहीं होती है, पर जैसे पूनम नजदीक आता जाता है लाइट बढ़ती जाती है और फुल लाइट चंद्रमा की, उसको कहेंगे संपन्न फुल। और फिर संपूर्ण माना कंप्लीट, कंप्लीट राउंड, और दिन पूरा राउंड नहीं है, क्रिसेंट मून कहते हैं ना, तो पता चलता है भाई आज दूज है, आज तीज है, आज चौथ है, आज पंचम है, आज दशमी है। और फिर जब पूनम है तो फुल मून, संपन्न और संपूर्ण। तो हमें संपन्न भी बनना है और संपूर्ण भी बनना है। तो संपन्न कैसे बनेंगे, संपूर्ण कैसे बनेंगे, देवताओं की महिमा में आता है ना सर्व गुण संपन्न। तो संपन्न किसमें बनना है, गुणों में, और सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। तो किसमें संपूर्ण बनना है, सारे विकार खत्म हो जाए, आत्मा की फुल साइज आ जाए। अभी तो विकार भरे हुए हैं तो वो टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, अभी तक पूरा चित्र बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो इसीलिए सर्व गुणों में संपन्न और सर्व कलाओं में संपूर्ण। कलाएं कौन सी, पवित्रता की कलाएं, आत्मा की कलाएं होती ना, जैसे चंद्रमा की भी कलाएं होती है, 16 कला सबसे मैक्सिमम, क्योंकि 16 दिन लगते अमावस्या से लेके पूनम तक, पूरे 16 दिन लगते। और इसी के आधार पर ही भारत में पहले हमारी करेंसी थी, जो 16 आना 100% है ना, 8 आना 50%। तो पहले तो यही करेंसी थी, 16 आना 8 आना 4 आना 2 आना 1 आना। हाँ, अभी तो चलो 100 पैसा कहते हैं, तो परसेंटेज आ गया, सरल कर दिया उसको। लेकिन 16 आना सच, तो 16 आना माना संपूर्ण। तो बाबा हम बच्चों को संपन्न भी बनाते हैं, संपूर्ण भी बनाते हैं। सर्व गुणों में संपन्न बनना है, कोई भी गुण की कमी नहीं हो। कौन से गुण, वो तो लिस्ट है बाबा ने दी है, पर कितने गुण होंगे। और उसमें भी दो प्रकार के गुण हैं, एक है आत्मा की अनादि गुण। आत्मा की अनादि गुण कौन से हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। यही कहते हैं ना सात रंग, सात रंग जिससे इंद्रधनुष बनता है, और सारा सब सात रंगों का ही संसार है। आठवां रंग अगर है तो कोई दो रंग को मिलाना पड़ता है। सात सुरों का ही म्यूजिक का संसार है, सारे गामा पादानी, बस इनको जोड़कर ही सारा सारा जो म्यूजिक है, जो संगीत है, उसका आधार है। 7 दिन जीवन कितना है? 7 दिन का ही जीवन है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि के बाद फिर सोम। 8वां दिन तो आता ही नहीं है। आता है? 8वां दिन आता ही नहीं। इसीलिए 7 का महत्व है। इसीलिए 7 दिन का कोर्स कहते हैं। वो 7 में सब कुछ आ जाता है। 7 दिन का कोर्स किसने किया, फिर कहते आगे क्या करना है। अभी रोज मुरली में आओ, जीवन तो मुरली से ही बनेगी ना। तो रोज जीवन है, सारा हमारा संसार ही फिर बाबा की मुरली है, बाबा का ज्ञान है। तो इसीलिए फिर वो अनादि गुण, फिर देवताओं के गुण तो आदि गुण। आदि गुण कितने हैं? अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, सहनशीलता, निर्भयता, कितने लिस्ट निकालो तो निकलती जाएगी कितने गुण। अब यही गुण फिर शक्ति बन जाते हैं। गुण और शक्ति में कोई अंतर नहीं है। सहन शक्ति भी कहते हैं, सहनशीलता भी कहते हैं। तो शीलता माना वो गुण हो गया, सहन करना, और सहन शक्ति भी कहते हैं। तो जब हमारे व्यवहार में वो दिखाई देता है, वो गुण हो गया, और जब वो आत्मा के अंदर भरता है, वो शक्ति हो गई, है ना? बाहर में जो दिखाई देता है वो गुण है। देखो ये कितना गंभीर है, देखो ये कितना शांत मूर्त है, पर वो शांति की शक्ति बन जाती है। वो गंभीरता एक शक्ति का रूप ले लेती है। तो शक्ति आत्मा की आंतरिक चीज है, और गुण जो कर्म में व्यवहार में आते हैं, जो औरों को दिखाई देते हैं। और गुणों के लिए क्या कहते हैं, गुण कभी सिखाए नहीं जा सकते हैं। अब किसी को आप शांति का गुण कैसे सिखाओगे? कोई भी गुण सिखाओगे कैसे? अपने व्यवहार से ही सिखाओगे ना। मेरे अंदर बहुत शांति है, मेरे चेहरे पर शांति झलक रही है, तो आप मेरी शांति से प्रेरणा लेंगे, और प्रेरणा लेकर के आप भी अपने आप को ऐसे शांति का अनुभव कराएंगे। पर मैं उसके ऊपर शिक्षा क्या दूं? तो इसीलिए कहा जाता है वैल्यूज। अभी तो वैल्यूज कहते हैं, पहले गुण कहते थे, वर्चूज कहते थे, अभी वैल्यूज कहते हैं। वैल्यूज कैनॉट बी टॉट, ये सिखाए नहीं जाते हैं, ये धारण किए जाते हैं। वैल्यूज कैन ओनली बी कॉट, उसको पकड़ा जाता है। इसके अंदर ये गुण है, मैं उसको अपने अंदर धारण करूं और इसका स्वरूप बनूं, है ना? वो मिसाल देते हैं ना कि महाभारत में मिसाल देते हैं कि द्रोणाचार्य ने पांडवों को कहा कि क्रोध को जीतना है, क्रोध को जीतना है। तो ये पाठ पढ़ाया क्रोध को कैसे जीते। तो पाठ तो पढ़ लिया पांडवों ने। अगले दिन जब पूछा पांडवों से क्रोध को कैसे जीतना, ये पाठ पढ़ लिया? तो 4 ने तो कहा कि हाँ पढ़ लिया, लेकिन युधिष्ठिर ने क्या कहा, अभी तक नहीं पढ़ा है। तो रोज कहे अभी तक पढ़ा नहीं है, अभी तक पढ़ा नहीं। लेकिन तो द्रोणाचार्य को गुस्सा आ गया, अभी तक क्रोध के पाठ को पढ़ा नहीं है? तो कहा हाँ अभी पढ़ लिया, क्योंकि द्रोणाचार्य ने क्रोध किया और उसने सहन किया, जवाब नहीं दिया क्रोध का, तो समझो कि क्रोध क्या, उसने पाठ पढ़ लिया। तो कहने का भाव है ये गुण सिखाए नहीं जाते, गुण ग्रहण किए जाते। सिखाना तो केवल एक थियरी हो गया, और जब वो धारण हुआ तो वो शक्ति बन जाता है। तो इसीलिए बाबा हमें गुणवान बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। तो इसीलिए हम सचमुच डबल लाइट बन करके फिर फरिश्ता बन जाते हैं। तो फरिश्ता किसको कहेंगे? जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं देश है देह के सब संबंधों को भूलो, अकेला हो जाओ, हमारी बड़ी दीदी अकेला का बहुत पाठ पढ़ाती थी। मनमोहिनी दीदी रोज कहती थी, रोज सुबह सुबह 5 केले खाओ, 5 केले खाओ। खा सकते हो? जो खा सकता है सुबह सुबह 5 केले, वह हाथ उठाए। अच्छा, खा सकते हैं? जो कहते हैं बड़ा मुश्किल है 5 केले खाना है सुबह सुबह, वह हाथ उठाओ। हाँ, देखो पीछे हाथ उठा रहे। अब दीदी उसका अर्थ बताती थी, कौन से 5 केले खाओ। हाँ, वो केले नहीं, उठ करके 5 केले खाओ, नहीं, 5 केले कौन से खाओ? पहला केला है अकेले आए हैं, ये है पहला केला, अकेले आए। आत्मा जब आई तो अकेली आई ना, अकेले आए हैं। दूसरा केला है अकेले जाना है। जब जाएंगे तो भी क्या होगा, ना हाथी होगा ना घोड़ा होगा, तुम्हें पैदल ही जाना, अकेला जाना है। तो अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में। अकेले में माना कोई और बुद्धि में न हो, बस अकेला में, अकेले में, अकेला होकर, अकेला होकर अकेले को याद करना है। कितने केले हो गए? तो अमृत वेले ये 5 केले खाओ, उस समय और किसी की याद न हो। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में, अकेला होकर अकेले को याद करना है। और बिंदु बनकर बिंदु को याद करो। अगर नहीं हो पाता है तो भले विचार सागर मंथन करो, भले करो, पर अमृत वेला कोई भी व्यर्थ संकल्प ना आए। इतना शक्तिशाली योग हो जो सुबह जो शक्ति भरी वो दिन भर काम आए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सवेरे सवेरे शक्ति भरो, वो दिन भर काम आती। बाबा उसमें जानवरों का मिसाल देते, गाय का मिसाल देते, बहुत बड़ा मिसाल है गाय का। गाय क्या करती है, सवेरे सवेरे ही खूब घास खाती है ना, उनको चरने के लिए भेज देते हैं ना ये बागों में, तो वो सवेरे सवेरे खूब गाय वो घास खाती है, लेकिन आधा आधा खाती है, और आधा आधा खा करके अपने पेट में रखती है। गाय को 2 पेट होते हैं, मनुष्यों को तो एक ही पेट है ना, लेकिन गाय को 2 पेट होते हैं। एक पेट में वो आधा खाया हुआ रखती है, सवेरे सवेरे सारे दिन का जैसे रख लेती है। फिर सारा दिन क्या करती है, उसका मुंह चलता ही रहता है। देखा होगा ना, गाय का मुंह चलता ही रहता है, गाय भैंस उनका मुंह चलता ही रहता है। खाती उस समय कुछ नहीं खाती है, लेकिन मुंह चलता रहता है। तो वो जो आधा खाया हुआ है वो वापस निकालती है, मुंह में आता है, और फिर वो पूरा पूरा चबाती है, फिर दूसरे पेट में जाता है, तो वो दूसरा पेट। तो बाबा ने भी उस दिन मुरली में कहा ना कि सवेरे सवेरे क्या करो, विचार सागर मंथन करो। बाबा ने कहा एक को ही याद करना है, परंतु उसके लिए विचार सागर मंथन करो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये तब हम कर सकेंगे जब विचार सागर मंथन करें। बाबा की मुरली हम सुनते हैं, लेकिन याद क्यों नहीं रहती है, क्यों नहीं याद कर रहती है? क्योंकि विचार सागर मंथन नहीं करते। और दूसरा कारण भी बाबा ने बताया, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, इसीलिए बाबा की बातें भूल जाते हैं। बाकी और दुनिया भर में लोगों ने जो कहा वो बातें याद रहती है। तो इसीलिए अमृत वेला और मुरली, ये ब्राह्मणों के लिए एक ऐसा पक्का नियम होना चाहिए जो कभी नहीं टूटे। तो उस अनुसार हम ब्राह्मण बन करके संपन्न भी बनते हैं और संपूर्ण भी बनते हैं। तो जब संपन्न और संपूर्ण बने तो फिर जिसको बाबा कर्मातीत कहते हैं, तो कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कर्मातीत है, वो कर्म का बंधन नहीं है। ब्रह्मा बाबा दादियों को हमने देखा कैसे कर्म बंधन से मुक्त होती गई होती गई होती गई। बड़ी दादी का तो हम मिसाल देते हैं, कैसे न्यारी प्यारी होती गई, बिल्कुल न्यारी प्यारी। क्योंकि दादी जी तो बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में तो इतनी पावरफुल थी, पूरा दादी के एडमिनिस्ट्रेशन में तो सारी संस्था इतनी आगे बढ़ी है ना, तो कैसे दादी जी पूरा वो संभालती थी, प्रशासक का बिल्कुल पक्की थी। परंतु लास्ट के दिनों में दादी न्यारी होती गई। नहीं तो कुछ भी छोटी छोटी मोटी बात भी हम दादी जी से पूछते थे और दादी जी कैसे उसका समाधान देती थी। लेकिन लास्ट के दिनों में दादी जी के पास जब हम जाते थे तो सब बातें भूल जाते थे, बिल्कुल दादी जी की स्थिति इतनी ऊंची, अब वो छोटी छोटी बातें क्या दादी से पूछे। तो बस दिल होती थी बस दादी से दृष्टि ले, बस कुछ बात बोले भी नहीं, ऐसी बस एकदम जैसे अशरीरी हो जाते थे, दादी जी से एकदम अशरीरी हो जाती थी। उसको कहेंगे कर्मातीत अवस्था, कर्म के बंधन से अतीत। दादी जानकी को भी ऐसे ही देखा, दुनिया भर की दादी ने सैर की होगी, जानकी दादी ने कितने देशों में सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी दादी जानकी, लेकिन कभी भी उनको ये भान नहीं आया कि मैंने कुछ किया। सबसे बड़ी बात थी कि दादी जानकी ने यूनाइटेड नेशंस है संयुक्त राष्ट्र संघ, वहाँ दादी ने भाषण किया इंग्लिश में, दादी को लिख के दिया था और वो इंग्लिश में 5 मिनट का वो स्पीच दादी जानकी ने लेक्चर के रूप में यूनाइटेड नेशंस जो वहाँ पर मेंबर्स थे उनके आगे सुनाया। तो बहुत उनकी तारीफ हुई, एक बूढ़ी औरत कैसे इतनी शक्ति से बोल रही है, तो बहुत वाहवा तो हुई। फिर दादी जानकी मधुबन में आई, तो मधुबन में आई तो मैंने दादी जानकी से ऐसे कहा, पूछा दादी आपने यूनाइटेड नेशंस में भाषण किया था, उसका क्या अनुभव है। दादी कहती है मुझे तो भूल भी गया, भाषण किया खत्म, पता नहीं फिर भूल गया, हमको तो मधुबन ही याद है। तो देखो इतना बड़ा कार्य दादी ने किया, लेकिन कभी दादी ने वर्णन नहीं किया अपनी सेवाओं का। जयंती बहन फिर भी सुनाती थी क्योंकि दादी जानकी के साथ ट्रैवलिंग करती थी, लेकिन दादी जानकी कभी नहीं सुनाती थी। और बड़ी दादी को भी देखा, इतनी सेवा करके आई, लेकिन बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी कभी नहीं सेवा समाचार सुनाती थी, वो मोहिनी बहन थी साथ में वो सुनाती थी, लेकिन बड़ी दादी ने कभी नहीं सुनाया मैं फलाने से मिली उनसे ये बात, कुछ भी नहीं, मोहिनी बहन सुनाती थी। क्योंकि दादियां तो न्यारी प्यारी धीरे धीरे होती गई, बस सेवा की लगन थी और तो कुछ था ही नहीं। तो ऐसा अनुभव हम दादियों से सीखते हैं और फरिश्ता बन गए, और फरिश्ता बनते बनते घर जाना है। चलो ओम शांति।
अभी हम सभी दिल से दीदी जी का क्या करेंगे। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत सुंदर तरीके से इस भट्टी का पूरा आनंद लेने के लिए दीदी ने स्पष्टीकरण किया कैसे हम डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए किन किन बातों पर अटेंशन देंगे। अभी हमारे बीच में मधुबन का मधुर वाणी ग्रुप से हमारे सतीश भाई, हल्दर भाई और साथी भाई है निरंजन भाई, तीनों भाई हमारे बीच में है। आप सबका हार्दिक स्वागत करने के लिए मधुबन पांडव भवन में खास आए हैं। आपका भी हम स्वागत करते हैं सतीश भाई एवं साथी जी, तो आप सबका भी स्वागत और दिल से आप सबके लिए विशेष गीत गाएंगे।
ओम शांति। मधुबन आया है इंदौर, कौन आया है, मधुबन आया है इंदौर, नाचता है हर मन का मोर, चला है भट्टियों का दौर, लाना प्रत्यक्षता का क्या भूल। बहुत सुंदर भाई जी ने लिखा, भाई जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये आशु कवि है और हमारे उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं सतीश भाई जी।
मधुबन में योग तपस्या का कार्यक्रम बनना और भट्टियों का दौर चलना और ऐसे आदरणीय दीदियों का संग मिलना, ये त्रिवेणी संगम या यूं कहे सोने पे सुहागा हो जाता है। तो मधुबन में आने का, यहाँ पर भट्टी करने का मौका मिलने का बहुत दिनों की प्रतीक्षा होती है, बड़े भाग्य से यहाँ पर आना होता है और चारों धाम पर करके मन तृप्त हो जाता है, लगन में मगन हो जाता है। वही भाग्य की गीत आपके लेकर आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयां, आपकी भट्टी सफल। एक बार जोरदार ताली बजा के अपना स्वागत।
आज फिर मधुबन है महका, चहकता आया है इंदौर।
आज फिर मधुबन है महका, चहकता आया है इंदौर। भाग्य के गीत गाता है, नाचता है हर मन का मोर। आज फिर, आज फिर, आज फिर मधुबन है महका, चहकता आया है इंदौर। भाग्य के गीत गाता है, नाचता है हर मन का मोर। आज फिर मधुबन है महका, चहकता आया है इंदौर।
कमला दीदी ने लहराया बगीचा है, भाई जी कमला दीदी ने लहराया बगीचा है। उसे है माँ बहन के संग पंच प्यारों ने सींचा है, भाई जी कमला दीदी ने लहराया बगीचा है। उसे है माँ बहन के संग पंच प्यारों ने सींचा है। सुवासित और करने को, सुवासित और करने को चला है भट्टियों का दौर। आज फिर, आज फिर, आज फिर मधुबन है महका, चहकता आया है इंदौर। भाग्य के गीत गाता है, नाचता है हर मन का मोर। आज फिर मधुबन है महका। मौन हो जब मन का मुख का मोबाइल मौन हो जाए, मौन हो जब मन का मुख का मोबाइल मौन हो जाए। शुरू हो तब अंतर यात्रा मगन मन प्रभु में खो जाए। मौन हो जब मन का मुख का मोबाइल मौन हो जाए। शुरू हो तब अंतर यात्रा मगन मन प्रभु में खो जाए। शक्तिशाली भक्ति करके शक्तिशाली भट्टी करके गला न पैकता का भोज। आज फिर मधुबन है महका, चहकता आया है इंदौर, भाग के गीत गाता है, नाचता है हर मन का मोर। आज फिर मधुबन है महका। सबको जरूरत है आपके योग तपस्या की, आज सबको जरूरत है आपके योग तपस्या की, तपस्या ही दवाई है आज सारे समस्या की। आज सबको जरूरत है आपके योग तपस्या की, तपस्या ही दवाई है आज सारे समस्या की। दीदियों संग खुशियों का कहीं मिलता और ना शो। आज फिर मधुबन है महका, चहकता आया है इंदौर, भाग्य के गीत गाता है, नाचता है हर मन का मोर। आज फिर मधुबन है महका, चहकता आया है इंदौर, आज फिर मधुबन है महका, चहकता आया है इंदौर, आज फिर मधुबन है महका, चहकता आया है इंदौर।